हरे रामा हरे रामा
हरे रामा हरे रामा
राम रामा हरे 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 कृष्ण। सो बहुत धन्यवाद धनंजय प्रभु संगीतमाच जी और परिवार का जिन्होंने हम सबको आज भगवान श्री कृष्ण की कथा और हरि नाम संकीर्तन करने का मौका दिया है। छोटे से बालक वैष्णव का जन्म तिथि का उत्सव है। कितने 4 साल का हो गया। सो बच्चे के जन्म तिथि के उपलक्ष्य में कांचे ग्राम में सत्संग का आयोजन किया है। आप सब उसमें पधारे हैं, आपका स्वागत है। श्रीमद् भागवत में दो ऐसी लीलाएं हैं, एक तो अघासुर का वध जो भगवान श्री कृष्ण ने किया वो लीला, और दूसरी कालिया नाग का जहां भगवान श्री कृष्ण ने दमन किया। इन दो लीलाओं में बलराम जी साथ नहीं गए थे और उसका कारण बाहर की दृष्टि से ये लिखते हैं कि उस दिन बलराम जी का जन्म तिथि थी। तो जब बालक का जन्मदिन होता है तो परिवार वाले उसको घर में रोक देते हैं, बाहर कहीं नहीं भेजते हैं, और फिर ब्राह्मणों को बुलाकर स्वस्ति वाचन करते हैं और भगवान को प्रार्थना करते हैं और बड़े बुजुर्ग आके आशीर्वाद देते हैं कि बालक आ ही गया है इस दुनिया में तो अब अच्छी तरह से अपना कर्तव्य निभाए। वैसे हैप्पी बर्थडे अंग्रेज ने जो कहा है, बर्थडे में कुछ हैप्पी चीज नहीं है। बर्थडे में क्या हैप्पी है? जन्म लेना कोई अच्छा थोड़ी चीज है। दुनिया में हमारे शास्त्र कहते हैं जन्म मत लो, यही कहते हैं ना, जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त होना, यही तो हमारे को शिक्षा मिलती है। जन्म लेने का मतलब तो संसार में बंधन में फंस गया ना, तो जेल में आ गया। तो जेल में आएगा कोई, जेल में रहेगा तो थोड़ी उसका उधर उत्सव मनाएंगे, अच्छा हुआ तुम जेल में आ गए हो, तुम्हारा फेस्टिवल मनाते हैं। तो ये उसका उत्सव मनाने का कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन जन्म हो गया है तो अब यहां से छूटने के लिए कुछ करना चाहिए। इसलिए हर जन्मदिन के ऊपर साधु संत महात्मा ब्राह्मणों को बुला के पुराने जमाने में लोग पूजा पाठ कराया करते थे और उस पूजा पाठ के उपरांत दान पुण्य करते थे। जैसे आप सब लोगों को बुलाया है, प्रसाद सबके लिए है, तो ये दृष्टिकोण तो ठीक है। जन्मदिन के लिए मनाना, भगवान को भोग लगाना, फिर सबको प्रसाद अर्पण करना, ये तो उचित है। बाकी धंधा करके बिजनेस है, बच्चे का जन्मदिन है, फिर कोई गिफ्ट आएगी, फिर जाएगी, फिर ले आएगा, फिर वो ये काटा कुटी होगी, केक की काट, केक कटेगा, कटता बटता कुछ नहीं है, बटता है सब कुछ है। तो ये तो अंग्रेज ने हमको सिखाया जो हमारी संस्कृति नहीं है, और फिर उसको काट के एक दूसरे के मुंह में ऐसे डालते हैं, ऐसे आश्चर्य जैसा लगता है कि वो खा नहीं सकते, भगवान ने हाथ नहीं दिए हैं, क्या तुम जरूर उसके मुंह में घुसेड़ रहे हो जबरदस्ती। ऐसे मजाक जैसा लगता है, लेकिन वो पब्लिक में प्रदर्शन करते हैं कि हम बहुत एक दूसरे से प्रेम करते हैं, लेकिन अंदर से घर में झगड़ा बहुत ज्यादा करते हैं। वो सिर्फ केक खाने के समय लगता है कि प्रेम करते हैं, बाकी तो जीवन सारा झगड़े का होता है। झूठ बोल रहा हूँ क्या? सब हंस रहे हैं, इसका मतलब कुछ सच है इस बात में। तो बलराम जी को नहीं भेजा गया था इन दो लीलाओं में, उसका कारण एक तो बाहर की दृष्टि से ये बताया था कि जब बलराम जी का जन्मदिन था इसलिए माता जी ने उसको, रोहिणी माता ने घर में बिठा दिया था, और उस दिन उसका विशेष अभिषेक स्नान आदि करके पूजा पाठ करानी थी। और अंतरंग दृष्टि से उसका कारण ये था कि जहां भी किसी सांप से भगवान श्री कृष्ण को लीला करनी होती है तो वहां बलराम जी नहीं होते, क्योंकि बलराम जी के होने से कोई भी सांप उधर रहेगा नहीं, बलराम जी आनंद शेष है, तो वो सांप अब भगवान के साथ लीला कर नहीं पाएगा, तो भगवान की लीला में कोई बाधा न पड़े इसलिए बलराम जी उस दिन नहीं जाते हैं। तो अघासुर के वध के पहले की कथा में ये है कि भगवान श्री कृष्ण ने एक दिन पहले सब ग्वाल वालों को कहा कि कल सब तैयार आके होके आना, हम बछड़े चराने जाएंगे। अभी भगवान गोपाल नहीं हुए थे, अभी तक केवल बछड़े चराते थे, 5 साल से छोटे थे तो बछड़े ही चराया करते थे, 5 साल से बड़े हो गए तो फिर गाय चराना शुरू कर दी। यहाँ तो 5 साल का बच्चा किसी काम का नहीं होता है, वो तो गाय बछड़े चराया करते थे, पुराने जमाने में सेवा करते थे बच्चे, वही भगवान ये सिखा रहे हैं कि बच्चे सेवा किए करते थे। तो सुबह सवेले पहले कौन उठा? भगवान पहले स्वयं उठे श्री कृष्ण, और उठ के अपना सींग बजाया। भगवान के पास एक सींग होता है, देखा सींग जैसे कॉन्शियल होता है, एक सींग होते हैं, सींग बजाया और सींग की ध्वनि सुनकर सब बालक उठ गए। अलार्म घंटी का जैसे बजता है, सबके लिए भगवान ने स्वयं ने वो सींग बजाया, सब बालक उठ गए। माँ को बोला जल्दी करो तैयार करो, कृष्ण तैयार हो गए, और सबकी माताओं को बोला, माताओं ने को बहुत अच्छा टिफिन तैयार करके दो, कोई ब्रेड बाजार से नहीं लाना, बच्चों ने कहा था तब ब्रेड नहीं बनती थी, अब ये ब्रेड का जमाना आ गया है। तब तो जल्दी जल्दी माताजी उठ के लड्डू बना लेती थी और बहुत सुंदर पराठे बना लेती थी और बड़ा सुंदर सा भात बनाया, तो क्योंकि भगवान के हाथ में दही और भात, इसका मतलब जमा हुआ दही था घर में, भात था, सब कुछ चीजें तैयार थी। अभी तो माताओं को कुछ भी नहीं करना है, ब्रेड बाजार से लाके उसके अंदर 2-3 थपके दे, ले जा बच्चा। पुराने जमाने की माता सवेल 4 बजे उठा करती थी, और उठ के पहले काम क्या करती थी? पहले काम करती थी आटा, आटा पीसती थी ताजा ताजा, अभी अभी का आटा गरम गरम होता था, और फिर दही के अंदर से मक्खन निकालती थी, उसी आटे की बहुत सुंदर रोटी, उसी के ऊपर वही मक्खन, फिर अपने बच्चे को उठा के कहती थी बेटा खाओ। तो वो बटर जो था, वो बटर बच्चा खाता था, माँ का अपने हाथ के पचाए हुए आटे की रोटी खा के जाता था, तो माता पिता का चरण छू के आशीर्वाद लेके फिर जाता था पढ़ने के लिए। अब बच्चे पढ़ने जाते हैं तो क्या करके जाते हैं आप लोगों को? गए चाह बाय को, कितने बच्चे चरणों को छू के जाते हैं? हाँ कहीं है संस्कार है बच्चों के, बच्चे कोई जाते हैं बड़े माता पिता के चरण छू के फिर पढ़ने जाते हैं? नहीं जाते हैं। तो इसका कारण क्या है? शिक्षा हमारी में कहीं कोई गलती हो गई है, इसलिए संस्कार सब समाप्त होते जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण द्वारका में रहते हुए अपने नित्य कर्म में ये सिखाते हैं, उठ के पहले ध्यान करते थे। अब किसका ध्यान करते थे? अपना ही ध्यान करते थे, और कोई तो है नहीं, लेकिन उठ के पहले ध्यान करते थे। फिर नहा धो के तैयार होने के बाद बाहर निकल के दान करते थे, पहला काम बाहर दान करते थे, और उसके बाद सब बड़े बुजुर्गों के को जाके चरण छू के आशीर्वाद लेते थे। महाराज अग्रसेन के पास जाते थे, वसुदेव के पास जाते थे, माँ देवकी के पास जाते थे, और अक्रूर जी के पास जाते थे, बड़ा काका था, बलराम जी के पास जाते थे, जितने बड़े बुजुर्ग थे सबको जाके रोज, एक दिन नहीं, रोज जाके चरण छू के आशीर्वाद लेते थे, और फिर अपनी सुधर्मा सभा ऑफिस में जाते थे। तो बहुत साल पहले हरिद्वार में ये कथा का चर्चा कर रहे थे राधा गोविंद स्वामी महाराज, तो उस दिन हमने सोचा कि भगवान जब जाके अपने बड़े बुजुर्गों को रोज पांव पढ़ते हैं, तो जब तक हमारे बड़े बुजुर्ग जीते हैं तब तक हमको भी पढ़ना चाहिए। तब से जब भी हम अपने घर कभी गए तो जितने बड़े बुजुर्ग है सुबह उठ के अपने घर से निकलने के बाद सबके पांव जरूर छूने जाया करते थे, कि ये शिक्षा भागवत में भगवान को पांव पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमको ये शिक्षा देने के लिए भगवान ने ऐसे किया था कि हमको कम से कम, और जो माता पिता के चरणों को छूता है उनके दिल से बहुत क्या निकल, क्या बोलेगा? अब किसी के पांव पड़ोगे तो क्या कहेगा सामने वाला? यही कहेगा सुखी रहो ना, यही कहता है ना, क्या कहता है? सुखी रहो, यही कहेगा ना। तो आप सुखी रहना चाहते हो कि दुखी रहना चाहते हो? सुखी तो सब रहना चाहते हैं ना, तो उसके उससे हृदय से तो यही निकलेगा कि सुखी रहो, हाँ तेरा आयुष्मान रहो, तेरी आयु बढ़े, और ये कहे और क्या करेगा? कोई बेटी बहू बेटी आएगी तो कहेगा पुत्रवती भव, ऐसे कोई ना कोई सौभाग्यवती भव ऐसे ही बोलेगा ना, कि तुम्हारा जीवन अच्छा रहे, तो ये अच्छा ही तो काम है। तो इतनी अच्छी मुफ्त की आशीर्वाद केवल नीचे झुकने से मिलती है, वो हम क्यों नहीं लेते? तो ये संस्कार हमारे अंदर से क्यों सब चले गए? ये भारत संस्कृति, सनातन वैदिक संस्कृति की ये मान्यता थी कि उसके अंदर ऐसे गुण थे कि छोटे से काम करने से बड़ा लाभ होता था। सभी आशीर्वादित इस वसा रोज कहते कहते एक दिन तो हृदय से ऐसी आशीर्वाद निकलती है जो हर मुश्किल से आदमी की रक्षा कर देती है। और ये सत्य है, झूठ नहीं है। जब बड़े बुजुर्ग की आशीर्वाद का कवच होता है, कवच का मतलब शील्ड की तरह होती है, वो हमारी रक्षा कर लेती है। तो ये माताजी, सब माताजियों को बच्चे कहने लगे ग्वाल बाल के, जल्दी करो, मेरी माँ टिफिन मेरा तैयार करो, मेरा लंच बॉक्स तैयार करो, कृष्ण बुला रहा है, कृष्ण का सिंह बज रहा है। सब माताजी ने फटाफट उनको, सब बच्चों को लंच बॉक्स बना दिया। बच्चों ने लंच बॉक्स उठाया, अपनी लाकुटी उठाई, लकुटिया मतलब लठिया, स्टिक उठाई बछड़े चराने के लिए, और सबके पास अपनी बांसुरी थी, सिंह थे, जो भी थे सब उठाए और भागते हुए बाहर आए। और भागवत लिखती है इतने समुन्द्र जैसे बछड़ों का जा रहे, आपके चारों ओर पानी का समुन्द्र है। गोकुल में बछड़ों और गायों का समुन्द्र था, जहां देखो केवल गाय और बछड़े दिखते थे, इसलिए नाम ही गोकुल है। गो का मतलब गाय, कुल का मतलब जहां रहते हैं स्थान। तो जहां ऐसे बाहर देखो तो केवल गाय ही गायों का समुन्द्र दिखेगा, तो केवल गाय और बछड़ों का समुन्द्र था। तो इसी को तो दूध सागर कहते हैं, वहीं से तो दूध मिलता था। तो जैसे दूध के सागर था, चारों ओर से बह रहा था, तो गाय के अंदर क्या है, दूध ही मिलेगा ना। मूर्खों को मांस मिलता है, साधुओं को तो दूध मिलता है। उसी गाय के जहां से थन के अंदर से दूध निकलता है, बछड़ा उधर दूध पीता है, उसी थन के ऊपर एक इतना बड़ा मोटा एक जीव बैठा है, जो वो खून पीता है। मालूम है, देखा है आपने कभी? उधर ही बैठा होता है, उसी थन के ऊपर जिसके अंदर दूध है ना, उसी के ऊपर इतना जौ बड़ा होता है, और वो क्या है, उसी थन के अंदर से खून पीता है और बछड़ा उधर से दूध पीता है। ये दुनिया में दो प्रकार के आदमियों का अंतर है। एक देवी प्रकृति के हैं जो सात्विक भोजन करते हैं, वनस्पति फल फूल दूध खाते हैं, और दूसरे असुरी प्रवृत्ति के हैं, सब कुछ सुख है फिर भी खून पीते हैं कि मांस खाते हैं। तो एक ही जगह पे दोनों चीजें पड़ी हैं, लेकिन एक क्या करता है, दूध पीता है बछड़ा, और एक वही जो इतना उधर बैठ के खून पीती। और दोनों का अंतर क्या होता है, दोनों के परिणाम में क्या अंतर होता है? जब खीर सागर का मंथन हुआ तो काम तो देवताओं ने भी वो किया, काम तो दैत्यों ने भी वो ही किया, दोनों ने मेहनत उतनी की, दोनों ने उसको खींचा थानी जितनी की, दोनों का परिश्रम बराबर था, लेकिन फल में दोनों को अंतर था। देवताओं को अमृत मिला और दैत्यों को केवल मुंह काला हुआ उनका, किससे, सांप के मुंह से जो विष निकला उससे वो इतने काले हो गए जैसे पेड़ आग में जलते हैं ना, आपके यहाँ आग लगाते हैं गन्ने को तो कैसे गन्ना काला हो जाता है, सारे असुर ऐसे काले हो गए, ऐसे हाथ लगाए तो हाथ काला। तो वो उनको क्या मिला, केवल काला मुंह हुआ उनका, और देवताओं को क्या मिला, अमृत मिला। काम एक जैसा किया, जगह एक, स्थान एक, काल एक, देश एक, कर्म एक, लेकिन फल में अंतर। क्यों? क्योंकि एक भगवान के प्रेरणा से कर रहे थे, एक भगवान के द्वेष से कर रहे थे। तो इस दुनिया में दो प्रकार के लोग हैं, एक भगवान के शिक्षाओं के अनुसार चलते हैं, उनको देवता कहते हैं, देवता ही पुरुष कहते हैं, और एक भगवान की शिक्षाओं के बिल्कुल विपरीत चलते हैं, उनको असुर कहते हैं। देह दिवो इमो पुरुष लोके क्षर चाक दिवो इमो स्वर्गे लोके अस्मिन देव असुर एवच। ये 16वें अध्याय में श्लोक आता है। दो ही प्रकार की सृष्टि होती है, दिवो इमो स्वर्गो लोके अस्मिन, इस लोक में दो प्रकार की सृष्टि होती है। कौन सी? देव असुर एवच। एक देवताई पुरुष होते हैं, एक असुरी पुरुष होते हैं। जो देवताई पुरुष वो होते हैं जो शास्त्र के अनुसार, भगवान की शिक्षाओं के अनुसार धर्म का पालन करते हैं, और असुरी प्रकृति के लोग वो हैं जो धर्म के विपरीत काम करते हैं, उसको नहीं मानते। जैसे अच्छा नागरिक कौन कहते हैं, भाई मॉरिशस के गवर्नमेंट के कानून को जो मानता है वो अच्छा रहने, वो अच्छा सिटीजन है, जो नहीं मानता है वो जेल में जाएगा, वो बदमाश कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा ये क्या कहेंगे उसको, क्या कहते हैं यहाँ, क्रिमिनल है, लॉ ब्रेक करता है तो क्रिमिनल हो गया। तो ऐसे जो असुरी प्रकृति के लोग हैं वो भगवान से द्वेष करते हैं, लेकिन एक बात बड़ी आश्चर्य की है कि वो सब देवताओं की पूजा करते हैं। हिरण्याकश्यप ब्रह्मा जी की पूजा करता था, रावण ब्रह्मा जी की जाके पूजा करता था, शंकर का बहुत बड़ा भक्त था, भोमासुर शंकर का भक्त था, ये सब देवताओं की पूजा करते हैं लेकिन भगवान से द्वेष करते हैं। तो असुर भी बहुत बड़ी तपस्या करते हैं, तपस्या करते हैं, पूजा करते हैं, संकट उठाते हैं लेकिन भगवान से द्वेष करते हैं। तो इस दुनिया में भगवान के द्वेष करने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं, और जो भगवान से द्वेष करते हैं उन द्वेष करने का मतलब क्या होता है, भगवान ही क्यों भोगता है, हमको भी थोड़ा भोगना चाहिए। इसलिए लोग अपने ही ऐश आराम के लिए, अपने ही एंजॉयमेंट के लिए इस दुनिया में सब कुछ चारों ओर क्या बनाया हुआ है, अपनी एंजॉयमेंट का ही काम चल रहा है, और क्या कर रहे हैं, जितनी पब्लिसिटी है ये क्या दिखा रही है, एंजॉय करो यही कर रहे हो। एंजॉय करो का मतलब ये है कि भगवान से द्वेष करो, एंजॉय करो का मतलब है इफ यू एंजॉय, आप भोग करोगे, इसका मतलब भोक्ता जो भगवान है उसको नहीं मानते हो, तुम अपने आप को भगवान बनाने का प्रयास कर रहे, छोटे से भगवान बनने का तुम्हारा प्रयास है जब तुम एंजॉय करने का विचार करते हो। भोक्ता आरम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृद सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। भोक्तारम यज्ञ तपस्याम सर्वलोक, भोक्तारम, भोक्तारम का मतलब इंजॉयर, कौन इंजॉय करता है, कौन आनंद लेता है, किसका यज्ञ तपस्या कोई भी करे उसका भोक्ता, उसका फल कौन लेता है, भगवान लेता है। क्यों लेता है, क्योंकि सर्वलोक महेश्वर है, सब लोकों का, सब लोगों का मतलब जितने ब्रह्मांड है उन सब का मालिक है, अधिपति है। अरे फिर तो उससे बात भी नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये तो आप में से कितने लोग हैं जो आपके अपने देश के प्राइम मिनिस्टर से मिले हैं, हाँ, या इस बैठे हैं हम जो 50 लोग बैठे हैं, इसमें से कितने लोग हैं जो अपने प्राइम मिनिस्टर से मिले, नहीं मिल सके ना, नहीं मिलते ना। तो जो सर्वलोक महेश्वर है, एक कोई मॉरिशस छोटा देश नहीं, इंडिया बड़ा देश नहीं, चाइना बड़ा देश नहीं, पूरी पृथ्वी, ये पूरा ब्रह्मांड है, ये सारा ब्रह्मांड एक मस्टर्ड सीड के बराबर है, एक मस्टर्ड सीड जो होता है ना उसके बराबर है, और ऐसे असंख्य अनगिनत, हाँ, अनलिमिटेड इन ब्रह्मांड है जो फुटबॉल की तरह ब्रज नदी के अंदर लुढ़क रहे हैं। उन सब ब्रह्मांडों के अंदर एक विष्णु है, एक शंकर है, एक ब्रह्मा है, हर ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा जी है, एक शंकर जी है और एक विष्णु जी है। ये सब ब्रह्मांडों के अधिपति हैं भगवान, भगवत गीता में कहते हैं सर्वलोक महेश्वरम, फिर उससे हम कैसे मिलेंगे, बड़ी परेशानी की बात हुई। अपने छोटे से इतने मॉरिशस छोटे टापू के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को मिलना मुश्किल है, तो भगवान जो सर्वलोक महेश्वर उससे कैसे मिलेंगे। एकदम भगवान ने क्या कह दिया, सर्वलोक में सुहृद सर्वभूतानाम, इतना बड़ा मैं सर्वलोक महेश्वर हूं फिर भी सबके दिल के अंदर बैठा हुआ। एकदम पहले क्या बताया, ऐश्वर्य है मेरा, ये ऐश्वर्य है मेरा, ये वैभव है मेरा, ये ऑपुलेंस है मेरी, ये ग्रेटनेस है, और एकदम क्या कहते हैं, फिर भी मैं आपसे इतना प्रेम करता हूं कि हर एक के हृदय में मैं बैठा हूं, हर एक के हृदय में मैं बैठा हूं। सुहृद सर्वभूतानाम, सु का मतलब अपना, हृदय का मतलब दिल, सबकी दिल में मैं बैठा हूं, आपको कहीं ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है, मिलने का हर एक को मिल सकता है। प्राइम मिनिस्टर हर एक से नहीं मिल सकता है, लेकिन भगवान हर एक से मिल सकता है, भगवान हर एक को मिल सकता है। ये एकदम भगवान की भक्त वत्सलता है, भगवान का अनुग्रह है, भगवान का अपने भक्तों के प्रति प्रेम है। सुहृद सर्वभूतानाम, सबसे प्रेम करते हैं, सबके हृदय में बैठे हुए हैं। तो वो भगवान जो सबके हृदय में बैठे हुए हैं कितना सुंदर, तो वो भोगता है। इस दुनिया में जब तक हम सोचते हैं कि हम इंजॉयर हैं तब तक हम भगवान के कॉम्पिटिटर हैं, भगवान से हम कॉम्पिटिशन का हमारा भाव है। और जब तक भगवान से ये प्रश्न महाराज प्रभुपाद जी ने गिरिराज महाराज से बोस्टन में पूछा था, गिरिराज महाराज गए अभी नए थे, प्रभुपाद ने पूछा, सो यू वॉन्ट टू सर्व गॉड और यू वॉन्ट टू बिकम गॉड, तुम भगवान की सेवा करना चाहते हो या भगवान बनना चाहते हो, क्योंकि हर जगह ये प्रचार होता है तुम भगवान बन सकते हो, आओ हम तुमको ध्यान सिखाएंगे तुम भगवान बन जाओगे। तो गिरिराज महाराज जवाब नहीं दिया, उत्तर नहीं दिया, बहुत शांत बैठे रहे, कुछ बोला नहीं। फिर प्रभुपाद ने उत्तर दिया, कहा So, if you want to serve God, God will give you intelligence. तुम भगवान की सेवा करना चाहते हो तो भगवान तुम्हें बुद्धि देगा. If you want to become God, why should God have a one competitor? तुम अगर भगवान बनना चाहते हो तो भगवान क्यों अपना एक कॉम्पिटेटर बनाएगा? Why should he make you as a competitor? He will finish you. पर कोई आपका कॉम्पिटेटर कोई होगा तो आपको अच्छा लगेगा. इस दुनिया में किसी को कॉम्पिटेटर अच्छा नहीं लगता है ना? लगता है किसी को अच्छा दूसरा कॉम्पिटेटर? नहीं लगता है अच्छा. तो भगवान क्यों एक कॉम्पिटेटर और बनाएगा? Those who think, तो इसलिए जो एंजॉयमेंट की जब तक धारणा है, एज लॉन्ग एज डिमांड्स ऑफ द बॉडी एंड माइंड, ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने लिखा है, शरीर की और मन की जो भी हमारी इच्छाएं हैं, और शरीर मन की इच्छाएं क्या ज्यादा नहीं है, चार ही हैं. खाना कहां मिलेगा? पहली इच्छा ये, कहां मिलेगा खाना? रहूंगा कहां? घर कहां है? जगह कहां है? और ये दो कामों का प्रबंध हो गया तो फिर भोग करने के लिए स्त्री को पुरुष चाहिए, पुरुष को स्त्री चाहिए, अब मेरे को विवाह करना है, ये तीसरी डिमांड है. और चौथी डिमांड क्या है? मैं सुरक्षा अपनी का प्रबंध कैसे करूं? हाउ आई प्रोटेक्ट माई सेल्फ. यही चार डिमांड है. ये चार ही डिमांडें हैं शरीर की और सभी इसी के पीछे लगा हुआ है. और ये डिमांड शरीर और मन की है. लेकिन शरीर और मन अपने आप में डिमांड कर सकता है क्या? मरे हुए आदमी में ये विचार होता है कि आदमी मर जाने के बाद ऐसे सोचता है? मरा हुआ आदमी कुछ खा सकता है? नहीं खा सकता, भोग भी नहीं कर सकता है ना. इसका मतलब ये डिजायर कहां से आ रही? सोल से आ रही है ना. सोल से, आत्मा से नहीं आती. अगर आत्मा से नहीं आती तो शरीर में तो डिजायर है ही नहीं, अपने आप में कहां से आएगी? इसका मतलब शरीर के अंदर डिजायर जो है वो आत्मा से आती है. वो डिजायर आती है आत्मा से, लेकिन वो शरीर के अंदर से जब गुजरती है तो परवर्टेड हो जाती है, तो उल्टी हो जाती है. तो ये जो डिजायर हमारी है ये भी असल में सोल की है. लेकिन जब शरीर के माध्यम से, थ्रू शरीर के वाया मीडिया से जब ये आती है तो परवर्टेड हो जाती है. जैसे मैटर, जैसे पानी बादल से जब गिरता है तो बहुत प्योर होता है, लेकिन मिट्टी से मिलते ही मैला हो जाता है. पानी जो ऊपर से गिरता है वो तो बहुत प्योर होता है, लेकिन मिट्टी से मिलने के बाद मैला हो जाता है. ऐसे सोल प्योर है, उसकी डिजायर प्योर है, लेकिन जैसे इस शरीर के साथ मिलता है तो वो मैला हो जाता है. तो ये सारी डिजायर एकदम मैली हो जाती है. तो असली डिजायर सोल की क्या है? भगवान भोगता है. लेकिन भगवान किसको भोगता है? भगवान को कौन आनंद देता है? भगवान को आनंद कौन देता है? देखो सामने, भगवान को आनंद देने के लिए कौन है? राधा रानी. राधा रानी भगवान को आनंद देने के लिए, उनकी सारी चेष्टा भगवान को कैसे सुख मिले. ये तो आप सबने कई बार सुना होगा गोपियों का, और भगवान के सर में दर्द होता है कृष्ण के, ये कथा तो सबने कई बार सुनी होगी. सुनिए सबने, हाँ, भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं दो अपने गोलोक धाम में, और नारद जी आए तो कहा, क्या बात है आज आप प्रसन्न नहीं दिख रहे हैं भगवान? आप तो शांतकार, हमेशा शांत रहते हैं, आनंदमय है. भगवान का सर में दर्द है. हाँ, सर में दर्द आपके हो गया, क्या दवाई करनी है, कहाँ चलना, का इलाज कहाँ से, आपके लिए मेडिसिन कहाँ से लाएं? बोला इसकी मेडिसिन है, मेरे भक्त कोई अपने चरण से रज दे दे, अपने पांव की धूली दे दे, मेरे सर के ऊपर लगाओगे तो मेरे सर का दर्द खत्म होगा. अच्छा, नारद भागता हुआ गया, योगी बैठे ध्यान लगा के हरिद्वार में, हिमालय के अंदर, बद्री का आश्रम में, केदारनाथ में योगी बैठे हैं, दाढ़ी बढ़ गई है, बाल बढ़ गए हैं, हजारों सालों से ध्यान में बैठे हैं, उनको जगाया. नारद को देख के सबने प्रणाम किया. नारद जी बोलिए क्या सेवा है? बोले जरा ऊंचा ऊपर उठो, तुम्हारे पांव की धूल चाहिए. बोले क्या करेगा? बोला भगवान के सर को लगाने. भाई भाग नारद, हमको नरक में भेजेगा? इतनी तपस्या किया फिर अपने भगवान जिसको हम ढूंढने हैं उसको पांव का, हम अपने पांव की धूल ही देंगे, भागो यहां से. नहीं दिया. पंडित जी के पास गया, मंदिर में घंट बजा रहा है, आरती कर रहा है, सुबह से शाम तक वेद पढ़ रहा है। नारद ने पकड़ के कहा तेरे हाथ पांव की धूली चाहिए भगवान को। बोला झूठ बोलते हो, नहीं भगवान को सर में दर्द हो रहा है। बोला मैं नहीं दूंगा, मेरे को नरक में नहीं जाना है। घूमता हुआ वृंदावन के अंदर ब्रज में नारद आता है, गोपियों को देखता है। गोपियों का नारद कहाँ से आ रहे हैं, प्रणाम आपको। बोला आ तो मैं अभी गोकुल से आ रहा हूँ, द्वारका से आ रहा हूँ, यथा भगवान जहाँ रहते हैं वहां से आ रहा हूँ। बड़ी प्रसन्न होकर पूछती कैसे भगवान का हाल क्या है। बोला भगवान को तो बहुत सर में दर्द है। बोला फिर, बोला चरण की धूड़ी चाहिए। तो सब गोपियां कहती हैं जल्दी करो जल्दी करो, अपने हाथ से उतार के और बोरी भर के बोलती सब ले जाओ, कितनी चाहिए तुमको, ले जाओ ले जाओ। अरे नारद बोलता है तुम्हें डर नहीं लगता है, तुमको नरक में जाना पड़ेगा, भगवान के सर को ऊपर तुम्हारी धूली लगेगी। बोला नरक में हम सदा के लिए रहने को तैयार हैं, लेकिन भगवान के सर का दर्द उतरना चाहिए, भगवान को सुख मिलना चाहिए, हम दुख झेलने को तैयार हैं। हमें कैसा भी दुख आएगा हम उसको भोग लेंगे, लेकिन भगवान को सुख देना यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो गोपियों का भाव, राधा रानी का भाव है कि भगवान श्री कृष्ण कैसे संतुष्ट हो। गोपियों को ने राधा रानी आदि ने कृष्ण भगवान जब वृंदावन से बाहर की दृष्टि से चले गए मथुरा, तो कहा कि हमारे प्राण अब अंदर शरीर में रहने को तैयार नहीं है, प्राण निकलना चाहते हैं लेकिन मरते नहीं है। क्यों नहीं मरते हैं? बोला इसलिए नहीं मरते हैं, कृष्ण बोल के गया है वापस आऊंगा, जब वो वापस आएगा और हमको नहीं देखेगा तो उसको दुख होगा, हम नहीं चाहते हैं तो उसको दुख हो, लेकिन हम रोज मरने को, हम रोज कष्ट सह लेंगे लेकिन कृष्ण को दुख नहीं होना चाहिए। मथुरा से वापस लौट के जब नंद बाबा आए, कृष्ण साथ नहीं था, तो यशोदा ने पूछा महर नंद, महर कहते हैं भाषा में उनकी, कि आप कृष्ण को वापस क्यों नहीं लाए। नंद बोला नहीं, नंद बाबा नहीं बोला, तो ऐसे कभी यशोदा बोलती नहीं है, लेकिन कृष्ण को और बलराम जी को नहीं देखा, उनके हृदय में ऐसे आया कि उनके बगैर खाली हाथ आए इसके लिए, इससे तो अच्छा हुआ आप भी वहां मर गए होते, बगैर कैसे, खाली हाथ कैसे आ गए। नंद बाबा आंखों से आंसू बहाते कह रहे थे कि मैं तो मर ही गया होता, कृष्ण नहीं आ रहे थे तो मेरे प्राण निकल ही रहे थे, लेकिन मैं नहीं रहता तो तुम नहीं रहती यशोदा, और तुम नहीं रहती तो फिर जब कृष्ण वापस आता और हमको नहीं देखता तो उसको दुख होता ना, इसलिए मैं अभी तक जीवित हूं क्योंकि कृष्ण को दुख नहीं पहुंचना चाहिए। हम रोज मर लेंगे, रोज दुख सह लेंगे, लेकिन भगवान को कभी दुख नहीं, भगवान हमारी न होने का दुख उसको न भोगना पड़े, इसलिए हम जीवित हैं। तो इसको कहते हैं कि सेवा, भगवान भोगता है और हम भगवान की सेवा के लिए। जब नंद बाबा भगवान की सेवा में आनंद लेते हैं, यशोदा मैया भगवान की सेवा में आनंद लेती है, राधा रानी भगवान की सेवा में आनंद लेती है, तो फिर हम तुच्छ जीवों को एक ही काम है कि इनके अंतर्गत हम भगवान की सेवा करने का अपने जीवन में संकल्प कर ले। जो भी सेवा भगवान श्री कृष्ण की हमको करनी है, हम सीधा जाके ऐसे नहीं कर सकते भगवान हम आपकी सेवा करने आ रहे हैं। राधा अष्टमी के दिन पर्वन चिन्ह देते हुए प्रभुपाद जी एक बार कहते हैं सो आपके हाथ में बहुत सुंदर फूल है और आप कृष्ण को देना चाहते हो तो आप जाके राधा रानी के हाथ में दो। बोलो माँ ये आपके श्री कृष्ण को दे दीजिए, और जब राधा रानी कृष्ण को अर्पण करेगी तो कृष्ण उसको स्वीकार करेंगे, आपको जानते भी नहीं है, इसलिए आप कहो हे माँ राधे ये फूल आप अपने कृष्ण को दीजिए और श्री कृष्ण उस आपकी भेंट को, आपके गिफ्ट को स्वीकार कर लेंगे। तो इसका अर्थ ये निकला कि जितने भी प्राणी संसार में है उन सबको अगर सेवा करनी है भगवान की, तो वो सेवा किसके थ्रू हो सकती है, केवल राधा रानी के थ्रू हो सकती है, केवल भगवान के जो नित्य परिकर है उनके थ्रू हो सकती है। तो इसलिए भगवान के भक्तों के माध्यम से हो सकती है, इसलिए भगवान के भक्तों के संग में भगवान की कथा सुन के भगवान के भक्तों के माध्यम से भगवान की सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। तो हम बात कर रहे थे बच्चों ने अपनी माताओं को कहा और गायों का, नहीं गायों का तो नहीं, बछड़ों का बहुत बड़ा समुन्द्र, आगे बछड़े और पीछे ग्वाल बाल जा रहे हैं, और श्री और बंद में जाके बछड़ों को तो छोड़ दिया घास खाने के लिए, और ग्वाल बाल आपस में खेलने लगे, एक का टिफिन उठा के दूसरे के हाथ में फेंके, उधर वो जाए वो तीसरे के हाथ में फेंके, अब टिफिन वाला इधर उधर घूम रहा है और एक दूसरे को फेंक रहे हैं, खेल रहे हैं। अभी बच्चे भी ऐसे खेलते हैं, और खेलते खेलते जब बहुत नजदीक आए तो कांटे वाले पेड़ के उधर फेंक दे, अब उधर जाके अपना टिफिन ढूंढता रहे। तो ऐसे कोई पेड़ के ऊपर चढ़ जाए, खेलते रहे। अचानक श्री कृष्ण को दूर से दिखाई दिया कि सारे ग्वाल बालों ने आश्चर्य देखा कि एक पर्वत नया कैसे यहाँ आ गया अचानक। पहले तो कभी जंगल में आते हैं एडी एक बहुत बड़ी पर्वत की कंदरा गुफा, हाँ एक बड़ी केव, कैसे है बहुत बड़ी केव है, अंदर तो जैसे रोड बना हुआ है, ऐसे रोड ताजा बना हुआ है क्या, ऐसे करके उसके अंदर देखने के लिए आश्चर्य से अंदर प्रवेश किया। श्री कृष्ण ने दूर से देखा, अरे अरे मेरे ग्वाल बाल कहाँ जा रहे हैं, अघासुर के मुंह में जा रहे हैं। ये अघासुर, अघ कहते हैं पाप को, अघासुर अघ पाप को कहते हैं, ये पाप का पुण्य, ये पाप का पूरा पाप का बना हुआ अघासुर एक असुर है जो बकासुर का भाई है, पूतना का भाई है, और ये आया है भगवान श्री कृष्ण को निगलने के लिए। ग्वाल बाल उसके मुंह में चले गए, श्री कृष्ण ने कहा मेरे ग्वाल बाल उसके मुंह में चले गए, अब तो चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, रोकने से रोका नहीं जा सकता। भगवान ने एकदम संकल्प किया, भगवान भी उसी अघासुर के मुख में घुस गए। जैसे भगवान मुख में गए और गले के पास पहुंचे, अपने भगवान ने गले के पास पहुंचने के बाद अंदर पहुंचे तो अघासुर के पूरे शरीर को फाड़ कर और उसके अंदर से बाहर निकले, और जैसे बाहर निकले और भगवान ने अपने भक्तों के ऊपर बड़ी आनंदमय दृष्टि डाली, सारे ग्वाल बाल जीवित हो गए। और ग्वाल बाल ने देखा हम तो मर ही चुके थे इस बड़े सांप के पेट में जाकर, ये तो कृष्ण ने कृपा की कि हमारा जीवन बच गया। और सबने देखा उस वक्त अघासुर के शरीर से उसकी आत्मा भगवान श्री कृष्ण के अंदर प्रवेश की, और ये ऊपर से ब्रह्मा जी ने देखा, उसको आश्चर्य हो गया कि ये कैसे हुआ, इतना बड़ा पापी अपराधी अघासुर, इसका कैसे उद्धार हो गया। और यहां से बच्चों को कृष्ण कहते चलो चलो बहुत हो गया, सब ठीक हो गए, यमुना के किनारे चलेंगे, चलो भोजन करते हैं। अब यमुना के बहुत सुंदर किनारे के ऊपर रेती के ऊपर बीच में कृष्ण बैठ गए, आठ सखा चारों ओर बैठ गए, फिर 16 बैठ गए, फिर 32 बैठ गए, फिर 64 बैठ गए, ऐसे कमल की तरह सब बैठ गए। हरेक ने अपना छीका खोला, टिफिन खोला और टिफिन से माल निकाला, कोई प्लेट नहीं कोई थाली नहीं, हाथ में माल लिया। एक बोलता है मेरी माँ ने देखो कैसा लड्डू बनाया कृष्ण, पहले चखता है कैसा है, फिर बोलता है कृष्ण तुम चख के देखो। और एक कृष्ण के पास जा रहा है तब बीच में मधुमंगल उसको ऐसे खींच लेता, बोला पहले मैं खाऊंगा, वो बीच में से खींच लेता है। अब कृष्ण के हाथ के ऊपर चावल दही रखा है और उंगलियों के बीच में इधर अचार रखा है, मिर्ची का है, इधर इधर पिकल है, मैंगो का पिकल है, इधर कैरेट का पिकल है, और हाथ में ऐसे वो भी उल्टे हाथ में सीधे हाथ से खाने के लिए ऐसे बैठे हुए। ब्रह्मा जी ऊपर हंस के ऊपर चढ़ के आए और सर से ऐसे देखा, दो आंखें आगे वाली से देखा, हे भगवान इसकी हम प्रार्थना करते हैं, थाली भी नहीं है, हाथ में खाता है, हैं? और बच्चों का झूठा खा रहा है, देखो बच्चे उसके मुंह से इधर तक पहुंचते वो खींच लेते हैं। फिर दूसरे सर से देखा इधर दो आंखें, तीसरे से देखा पीछे से आठ आंखों से देखा, ब्रह्मा जी को समझ में नहीं आया। और ग्वाल बाल देख रहे हैं और अभी तक किसी ने खाना शुरू नहीं किया है, अचानक कृष्ण को देखने के बजाय ग्वाल बालों ने देखा दूर, अरे 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 हमारे बछड़े कहाँ गए, कृष्ण हमारे बछड़े कहीं चले गए। कृष्ण से दृष्टि हटी और दुर्घटना घटी, भगवान से दृष्टि हटी और दुर्घटना घटी एकदम। हम भगवान से दृष्टि हटाते हैं तब हमारी समस्या आती है। कृष्ण कहता चलो मैं देख के आता हूँ बछड़ों को। कृष्ण बछड़ों को देखने गए, हाथ में ऐसे ही हाथ में लिया हुआ है, खाया नहीं है, किसी ने कुछ नहीं खाया। अरे बछड़े ढूंढे कहीं नहीं मिले, अरे बछड़े कहां गए। वापस लौट के आके देखते हैं तो ग्वाल वाल भी नहीं है। अरे ये विधि का काम है, ब्रह्मा जी का काम है, विधि है, विधाता है, वो लेके गया है, चलो कोई बात नहीं। अब विधाता ले गया है तो विधाता को दिखाना है, उसी से कॉम्पिटिशन करनी है, तो जिस काम में वो बहुत बड़ा होशियार है, निपुण है, एक्सपर्ट है, वही काम करके दिखाना है। ब्रह्मा जी क्या कर सकता है, सृष्टि करता है ना, वो सृष्टि कब करता है, जब आत्माएं उनके कर्म और प्रकृति के सारा सामान पांच तत्व आदि भगवान देता है, तब उन सबको मिलाकर ब्रह्मा जी शरीर बनाता है, यही करता है ना ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी सृष्टि कैसे करता है, इसको बोलते हैं निमित्त कारण। निमित्त कारण का मतलब जैसे 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 ये लोहे का माइक्रोफोन है, इसको जिस कंपनी ने बनाया वो इसकी निमित्त कारण है, लेकिन लोहा इसका उपादान कारण है, मीन्स बना किस चीज से, लोहे से बना है, तो लोहा इसका ओरिजिनल कारण है और कंपनी इसका सेकेंडरी क्रिएटर है। ऐसे ब्रह्मा जी को आत्मा कौन देता है? उनके कर्म का चिट्ठा पूरा, और उसको कहते हैं 24 तत्व प्रकृति के महाभूत, जिसको कहते पांच महाभूत इंद्रियां, दश एकम, दस इंद्रियां, ये सब सामान कौन देता है? 24 तत्व ये भगवान देते हैं। ये सब जब ब्रह्मा जी को मिलता है, मानो ब्रह्मा जी सबको कंप्यूटर में फीड करते हैं, फिर बटन दबाते हैं, ये आदमी इसके कर्म कैसे हैं? ओ कर्म तो इसके गधे जैसे हैं, गधे वाला बटन दबाता है और गधा बन के बाहर आता है। ब्रह्मा जी को इतना ही करना है, सामान सब अंदर डाल के फिर बटन दबाता है कर्म का, अरे ये तो कुत्ता बनना चाहिए, दबा कुत्ते को, ये बन गया कुत्ता। ब्रह्मा जी बस ऐसे फिर तो जैसे काम चलता रहता है, ब्रह्मा जी मॉडल बनाते रहते हैं, 84 डिफरेंट मॉडल ब्रह्मा जी के तैयार हो जाते हैं। तो श्री कृष्ण का अब मैं सृष्टि करने जाऊंगा, उस सृष्टि में मुझे किसी की आत्मा की जरूरत नहीं है, पंचभूतों की जरूरत नहीं है, कर्मों की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप से अलग बनाऊंगा। अब भगवान ने क्या किया, अपना ही विस्तार किया, जितने ग्वाल बाल थे अपने आप से उतने ही ग्वाल बाल बनाए, वैसे ही ग्वाल बाल बनाए, उनका नेचर वैसा ही बनाया, उतनी लठ बनाओ, लठिया भी उतनी बनाई, टिफन भी उतने बनाए, और बछड़े भी उतने बनाए, और सारे के सारे अपने आप से बनाए, हर एक चीज कृष्ण का ही विस्तार थी। अब ये सब जब शाम को घर गए तो माँ अपने बच्चों से बहुत प्रेम कर रही है, गैया अपने बच्चों से बहुत प्रेम कर रही है, न ये गैया के बच्चे थे न माँ के बच्चे थे, ये तो कृष्ण था, तो कृष्ण से सब इतना ही प्रेम कर रहे। और इस बात में एक साल क्या, ब्रह्मा जी यहाँ से वापस लौटे, ब्रह्मा जी जा रहे थे, ब्रह्मा जी की ऑफिस जो है, ब्रह्मा जी की ऑफिस है सुमेरु पर्वत पे, और ब्रह्मा जी रहते हैं सत्यलोक में। तो ब्रह्मा जी ऑफिस में जाने लगे, भगवान ने कहा ये ऑफिस में जाएंगे, काम में कहीं फंस गए, वापस आने में देर लगेगी, तो मेरे को तो बछड़ा बन के बहुत समय तक घास खाना पड़ेगा, ये काम मुसीबत। भगवान ने क्या किया, ब्रह्मलोक में चले गए, पहले ब्रह्मा बन के जाके भगवान बैठ गए, बोला एक नकली ब्रह्मा आ रहा है उसको अंदर मत आने देना। अब असली ब्रह्मा दीवार पे आके दरवाजे पे आया, असली ब्रह्मा धक्का दे के सबने कहा निकलो निकलो, असली ब्रह्मा अंदर बैठा, तुम कहां से आ गया? ए ब्रह्मा जी वापस वहां से भागे, अरे कहां हुआ, नीचे आके देखे, अरे बछड़े भी वही, ग्वाल बाल भी वही है, ये तो वही है। फिर जाके जो छुपा के आए थे वो देखे, अरे ये यहां पड़े, तो असली कौन से नकली कौन से पता नहीं लगा। ब्रह्मा जी बहुत परेशान हुए कि कौन से असली है कौन से नकली है, और ब्रह्मा जी को ये चिंता है। इस बीच में ब्रह्मा जी का जाने आने में एक मिनट लगा, यहां का एक साल बीत गया, और बलराम जी गोवर्धन के ऊपर खड़ा, गोवर्धन के ऊपर गाय चला रहे थे ग्वाल बाल, और नीचे कृष्ण बलराम बछड़ों को लेकर खड़े थे। बछड़ों गायों ने एक बछड़े नए बछड़े को जन्म दे दिया था, ये बछड़े बड़े थे, फिर भी गैया ऊपर से गोवर्धन से भागी इन बड़े बछड़ों को दूध पिलाने के लिए, ग्वाल रोक नहीं पाए, बड़ा गुस्सा हुआ, नीचे आए तो बच्चों के ऊपर गुस्सा नहीं हुआ, प्रेम हो गया, आलिंगन कर रहे। बलराम जी ने देखा ये क्या हो गया, अपने छोटे बच्चों को छोड़ के बड़े बच्चों को गैया दूध पिला रही है, ये ग्वाल यहां इतना गुस्से से आए थे इनको मारने के लिए और इनसे प्रेम कर रहे हैं। बलराम जी ऐसे देखते हैं, हा? माया तो मुझको भ्रमित नहीं कर सकती है, ये सब चार हाथों वाले कौन है? तो ब्रह्मा जी ने, तो बलराम जी ने कृष्ण की तरफ देखा, बोले नहीं, बोला ये सामने क्या है, ये सब कौन है? ब्रह्मा जी ने कहा ये, कृष्ण ने कहा, श्री कृष्ण ने बोला ये ब्रह्मा जी की, ये ब्रह्मा जी का काम है सारा। बलराम जी समझ गए, ये तो भगवान श्री कृष्ण का विस्तार है। इतनी देर में ब्रह्मा जी ऊपर से उतरे और प्रार्थना करने लगे, और इतनी प्रार्थना की कि बहुत बड़े पूरा चैप्टर प्रार्थना का है ब्रह्मा जी की, कि मैं समझ नहीं पाया, आप तो सच्चिदानंद है, आप भगवान है, भक्तों की सेवा से मिलते हैं, मैं तो ब्रज के अंदर कोई घास बन जाऊं और आते जाते, ब्रज के अंदर नहीं, ब्रज के वृंदावन के बाउंड्री के ऊपर मैं घास बन जाऊं और लोग आते जाते चरण की रज लगेगा तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा, ऐसे ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं। लेकिन भगवान ने उसकी तरफ देखा भी नहीं और असली ग्वाल बाल वापस आ गए। वो ग्वाल बाल जब घर पे आए तब उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा आज कृष्ण ने हमारी रक्षा की, एक बहुत बड़े अघासुर को मार दिया, और सब जाके देखें तो अघासुर एक साल पहले सूख गया है, और एक बहुत बड़ा खेलने का आइटम बन गया, बच्चे जाके उसमें खेला करते थे बाद में। और यहाँ पांच साल भगवान के, एक साल गुजर गया, छह साल के हो गए, अब तो गाय चराने चले गए। तो गाय चराते चराते फिर खा लिया नाग को। गायों ने जाके गर्मी में पानी जमुना का किया, चमुना का पिया। ग्वाल बालों ने भी प्यास में गर्मी की वजह से पानी पिया, सारे मूर्छित होके मर ही चुके थे। भगवान ने सबको दृष्टि डाली और फिर देखा कि मेरी गायों और ग्वालों को संकट दे रहा है, तो जमुना में कूद के कालिया नाग का भगवान ने उस दिन फिर दमन किया। तब भी बलराम जी नहीं थे, क्योंकि बलराम जी का जन्म तिथि थी, ये कथा कर रहे थे। तो जन्म तिथि मनाने का विधि विधान ये है कि ब्राह्मण साधु वैष्णव को बुलाकर हरि कथा कीर्तन करके बच्चे के लिए शुभकामना करनी चाहिए कि बच्चा आज्ञाकारी बने, भक्त बने, माता पिता की सेवा करे, भगवान का भक्त बने, ऐसा संकल्प करना चाहिए। बाकी दो टाइम की रोटी तो सारे लोग दुनिया में खा रहे हैं, ये तो कुत्ते बिल्ले गधे भी खा रहे हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है। अच्छा आदमी बने ये ही कुछ करो है? भक्ति विनोद ठाकुर लिखते, मैं नहीं कहता हूँ, अगर आपके पास वो सांग बुक है तो भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं। वो उस वक्त में मजिस्ट्रेट थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट के मजिस्ट्रेट थे। वो बोलते ये सारी विद्या जो मैंने प्राप्त की है, पढ़ी है, ये सारी अविद्या है, ये सारा इग्नोरेंस है, इसने मेरे को गधा बना दिया और गधे की तरह हर वक्त मैं काम करता रहा, आज मैं इस सबको छोड़ के कृष्ण में आपकी सेवा में लगता हूँ। दो जब दो दब बार उसमें गधा चलते। सांग बुक है यहाँ? हरे कृष्णा,
हरे
कृष्णा,
हरे
कृष्णा, कृष्णा
कृष्णा,
हरे
हरे,
हरे राम,
हरे राम,
राम राम, हरे
हरे।
तो ये कैसे भी इस दुनिया के अंदर हमारे को भगवान के नाम लेने का नेम बन जाए तो हमारा जन्म सफल हो जाएगा, नहीं तो बेकार में बहुत दुखी होके मरेंगे। और फिर ये लिखा है विद्या विलास, क्या लिखा है? जड़ विद्या जतो माया र वैभव, और क्या लिखा है आगे? हाँ, तुमार भजने बाधा महा जनमिया, मैं चश्मा नहीं है ना, अनित्य संसारे। फिर क्या लिखा है? जब के कराए गद्धा, लिखा है हाँ, जीव, हाँ जीव को कराए गधा। ये जो विद्या है ये पढ़ेंगे तो क्या करेगा, सुबह ऑफिस जाओ, रोज वही काम करो गधे की तरह, शाम को वापस लौट के आओ, थोड़ा सा घास खाओ और फिर सो जा। और भक्ति विनोद ठाकुर कहे से ही गधा, से ही गधा, वही गधा, बोलते वही गधा, वही गधा संसार बोझा क्या है। तो इसको पढ़ो, मेरे को दिखता नहीं है, बड़ा सुंदर लिखा। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, मैं तो आचार्य की भाषा बोल रहा हूँ, नहीं तो बेकार में संसार में पढ़ के पीएचडी करके भी गधाई बनना है, इससे अच्छा है कि भगवान के भक्त बने, भगवान का नाम जपे, भगवान का जन्म सब। क्या लिखा
है? गधा होइए संसार अनेका कला।
ट्रांसलेशन पढ़ लो, सब समझेंगे।
There is no other treasure in this world but your lotus feet, thus configured, giving up all mundane knowledge, makes lotus feet the sum of substance.
एक लाइन पहले।
Life has become an agony now. That knowledge has become ignorance and the burning pain of ignorance has become intolerable. Mundane knowledge has become just like a pointed shaft. Yes.
As
here is one such as
एक गधा, इससे पहले वो गधा बनाता है, लास्ट लाइन में गधा होगा।
Who has for so long carried on his back the burden of material existence. Now in my old age, for want of the power to enjoy, nothing pleases me.
अब इसका अर्थ क्या है कि जब तक शरीर में शक्ति थी तो मैं भोग कर रहा था, अब शरीर में शक्ति नहीं है, भोग नहीं कर सकता हूं, तो कहता हूं अब भोग छोड़ के मैं भगवान का भजन करूंगा। किसी को बोलते हैं तुम हरे कृष्ण जपो, बोला बूढ़ा होऊंगा तब जपूंगा, तब भोग नहीं करेगा तो तब जपूंगा, तब तो होगा नहीं भोग, तो ये तो गधा बन गया है। हरे कृष्ण, तो सबको भगवान का भजन करना चाहिए, जन्मदिन के ऊपर हरि कथा कीर्तन करना चाहिए, ये डांस गाना नाचना ये नहीं करना चाहिए। ये अंग्रेजों ने हमको मूर्ख बनाया कि ये नाचते रहे गधे की तरह, हमको गधा बना के गया, और वापस मानव बनो। हरे कृष्णा, धन्यवाद। श्री प्रभुपाद की हरे कृष्णा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।